मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 30 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 30 जनवरी है और आप जानते हैं कि 30 जनवरी की तिथि हमारे इतिहास में किस रूप में अंकित है, भले ही वह बहुत शोकपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ही अंकित क्यों न हो, सन 1948 की आज ही की तारीख में महात्मा गांधी जी हम सबको छोड़कर चले गए थे, या यूं कह लीजिए कि उनका निधन नहीं हुआ था बल्कि उनकी हत्या की गई थी, गांधी जी की हत्या। आप सोच करके देखिए कि जिसे हम महात्मा कहते हैं, जिसे महात्मा कह रहे हैं, महात्मा के रूप में जिन्हें हम पूजते हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है। तो मित्रों सबसे पहले तो मैं आज इस अवसर पर आप सभी अपने प्यारे साथियों की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करना चाहूंगा और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मित्रों आज इस अवसर पर मैं उनकी जो आत्मकथा है जिसे हम सत्य के प्रयोग के नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। दरअसल जो मैं सत्य के प्रयोग की चर्चा की बात कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कि वह किसी की आत्मकथा है, बल्कि सच पूछिए तो मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं और साथ ही पूरी विनम्रता के साथ कह सकता हूं कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जो बहुत ही सामान्य सा है। वह उन सारी कमजोरियों से युक्त है जिन कमजोरियों से कोई भी व्यक्ति भरा हुआ होता है, और इसके बाद फिर कैसे वह व्यक्ति धीरे धीरे उन कमजोरियों से उबरने की कोशिश करता है, अपनी उन कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होता है, उनसे लड़ता है, कैसे उनसे जूझते हुए अपने आप को धीरे 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 मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी तक पहुंचा देता है। और इनफैक्ट श्याम बेनेगल जी ने जो एक फिल्म बनाई है मेकिंग ऑफ महात्मा, हालांकि ठीक है कि वो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी जी का उस समय बीता है, वहां किस तरीके से उन्होंने प्रयोग कर करके अपनी आत्मा का उत्थान किया है उसको खासकर फिल्माने की कोशिश की है, लेकिन इनफैक्ट उनके बचपन से लेकर के और अंत तक आप इसी प्रक्रिया को पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स पहली अपील तो मैं आज इस अवसर पर आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सब गांधी जी की इस आत्मकथा को, सत्य के प्रयोग को जरूर से जरूर पढ़े। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हो, और अगर पढ़ भी ली है तो कोई बात नहीं, अब मैं अपील करूंगा कि आप उसे थोड़े से नए ढंग से पढ़ने की कोशिश करें। नए ढंग से पढ़ने कहने का मेरा मतलब है कि आप जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करें, भूल जाए महात्मा गांधी को, और आप देखें कि जो हमारी जिंदगियां हैं चाहे किसी की भी हो, हम तो महात्मा गांधी की जिंदगी देख रहे हैं, आप अपनी ही जिंदगी की खिड़की से झांक करके उसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, रिप्लेस कीजिए कि नहीं, महात्मा गांधी की जगह मैं हूं और अगर मैं यहां होता इस समय तो मैं क्या कर रहा होता, महात्मा गांधी ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने जो किया उसी के परिणाम स्वरूप वो महात्मा बन पाए हैं। तो जब आप उनकी जिंदगी में जिंदगी की तलाश करेंगे, गांधी की तलाश नहीं जिंदगी की तलाश करेंगे, तब आप सही मायने में उस किताब से लाभ उठा पाएंगे और उस किताब को अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने का आधार बना पाएंगे। और सच पूछिए तो मुझे तो यह भी लगता है कि यह एक तरह से हमारे लिए एक जीवन की किताब हो सकती है, एक गाइड हो सकता है, एक मार्गदर्शक हो सकती है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन को आगे ले जा सकते हैं और उसे महानता की ऊंचाई तक पहुंचा भी सकते हैं। फ्रेंड्स यहां मैं आपको सत्य के प्रयोग की भूमिका में गांधी जी ने जो कुछ बातें कही हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, पर मैं आत्मकथा लिख कहां रहा हूं, मैं तो आत्मकथा के बहाने अपने उन प्रयोगों की कथा लिखना चाहता हूं जो मैंने सत्य के लिए समय समय पर किए हैं। हां यह बात सही है कि मेरा सारा जीवन ऐसे ही प्रयोगों से भरा हुआ है। अब आप देखिए कि वो अपने जीवन को ही प्रयोग कह रहे हैं। तो अगर हम इनकी यह ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको क्या नहीं लगता है कि हम एक व्यक्ति के जीवन की प्रयोगशाला से गुजर रहे हैं, और वह भी बहुत ही सच्ची प्रयोगशाला से। गांधी जी की इस आत्मकथा को इसलिए विश्व के महानतम आत्मकथाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बड़े, आप यूं कह लीजिए कि स्पष्ट तरीके से, बहुत ही पारदर्शी तरीके से अपने जीवन को हमारे सामने खोलकर रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अच्छा अच्छा तो लिख दिया और जो उसका खराब पक्ष था, जो उसका काला पक्ष था, उसे छोड़ दिया है। नहीं, उन्होंने उसे भी सामने रखा है, क्योंकि यदि आप उसे छोड़ देते हैं तो फिर वो जीवन का प्रयोग नहीं कहलाएगा, फिर तो वो जीवन का संकलन सा कहला जाएगा कि आपको जो अच्छे लगे, जो घटनाएं अच्छी लगी, आपने उन्हें ले लिया और बाकी को छोड़ दिया, फिर जीवन खंडित हो जाएगा। गांधी जी ने यहां जीवन को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया है। अब आप देखिए कि वो अपने जीवन को, मित्रों, देख किस रूप में रहे हैं। मुझे लगता है कि हम जरा सा इसे भी अगर समझ लेंगे तो हमें जीवन की एक नई परिभाषा दिखाई देगी, या यूं कह लीजिए कि जीवन की नई परिभाषा, या जो भी हम अपने जीवन में करते हैं उसका शायद एक नया स्वरूप हमें दिखाई पड़े। वो अपने कार्यों को किस रूप में देख रहे हैं, आप देखिए। जो बात मुझे करनी है, आज 30 साल से जिसके लिए मैं उद्योग कर रहा हूं, वह तो है आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो चाहता हूं, जो करना चाहता हूं और जिसके लिए लगातार मैं 30 साल से लगा हुआ हूं, वो क्या है, उसे क्या नाम दे रहे हैं, आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, यानी कि स्वयं का साक्षात्कार, आत्मदर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार, और अंत क्या है, मोक्ष, मुक्ति, जीवन मरण के चक्र से स्वतंत्र। मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है। अब आप देखिए कि वो कर क्या रहे हैं। वो घर बार छोड़ करके जंगल में नहीं चले गए, हिमालय की गुफाओं में जाकर के वो तपस्या नहीं कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं नहीं कर रहे हैं। यहां इनकी इस दृष्टि को देखिएगा, मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया, मैं जो कुछ भी करता हूं इसी दृष्टि से होती है, मैं जो कुछ लिखता हूं वह भी सब इसी उद्देश्य से, और राजनीतिक क्षेत्र में जो मैं कूदा सो भी इसी बात को सामने रखकर। इसका मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि हम जो कुछ भी करते हैं, अगर उसमें हमारी भावनाएं पवित्र हैं, हमारा उद्देश्य ऊंचा है, तो वही एक प्रकार से आत्मदर्शन का माध्यम बनता है, ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है, और उसी से ही हमें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब आप देखिए कि कर्म को इतनी श्रेष्ठ ऊंचाई तक पहुंचा देना कम बड़ी बात नहीं है। और सच पूछे तो गीता में भी तो कृष्ण ने यही कहा है, वेद व्यास ने यही कहा है। तो क्या हम अगर कहें कि गांधी जी की यह आत्मकथा एक प्रकार से एक व्यक्ति ने अपने जीवन के माध्यम से गीता को ही फिल्माया है, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वह गलत होगा? मेरी समझ से शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हर जगह जब आप इसे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, आपको विरोध दिखाई दे रहा है, आपको आकर्षण, लोभ, ईर्ष्या, मोह, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि किसी के जीवन में भी दिखाई देते हैं। लेकिन गांधी जी हर बात से संघर्ष करते हुए उनसे उबरते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है फ्रेंड्स कि अंत तक, जीवन के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते उनकी आत्मशक्ति देखे कि इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है कि दंगाइयों के बीच, जबकि देश का विभाजन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे अपने चरम पर हैं, उन दंगाइयों के बीच नोआखली में अकेले नंगे पांव सड़क पर निकले हुए हैं उन दंगों को रोकने के लिए, और किसी ने उनके ऊपर एक भी पत्थर नहीं फेंका, कोई अटैक नहीं किया। यह शक्ति किसकी है? ये आत्मशक्ति है, और यह आत्मशक्ति उस व्यक्ति की आत्मशक्ति है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति राजकोट के कोर्ट में खड़ा होकर, गांधी जी आपको मालूम है कि वकील थे, बोलने तक से डरता था, घबराता था, संकोच करता था, जो बोल नहीं पा रहा है। अब आप देखिए कि उसने अपनी आवाज को कितना परिवर्तित कर दिया है, कितना बदल दिया है कि अब उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया सुन रही है, उसके ओंठ हिल रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वो व्यक्ति हुंकार कर रहा हो। ये क्या है? तो आपको इनकी इस आत्मकथा में जीवन के बहुत सारे संदर्भ देखने को मिलेंगे, और मैं सभी पेरेंट्स से अपील करूंगा कि वे अपने बच्चों को सत्य के प्रयोग किताब जरूर पढ़ाएं। अगर बच्चा छोटा है तो इसके बहुत से संस्करण हैं, छोटे संस्करण भी हैं, और यदि बच्चा बड़ा है या आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनका जो पूर्ण संस्करण है, जो पूरा वॉल्यूम है, आप उसे पढ़ें। बहुत मोटी किताब नहीं है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो उसका लाभ यह होगा कि छोटी छोटी घटनाएं भी उसमें दर्ज होंगी, और उन घटनाओं से आप जीवन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। भूल जाइए स्वतंत्रता आंदोलन, भूल जाइए एक आदमी की कहानी, नथिंग, कुछ नहीं, आप तो उसमें केवल अपने को देखिए, एक दर्पण की तरह इसका इस्तेमाल कीजिए, तब आप पाएंगे कि सच में जिंदगियां कैसे बदलती हैं, जिंदगियां कैसे आगे बढ़ती हैं, जिंदगी कैसे रूप लेती है। और मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनकी इस ऑटोबायोग्राफी को बहुत ध्यान से पढ़ना, एक विचार पूर्वक पढ़ना, या कह लीजिए उद्देश्यपूर्ण तरीके से पढ़ना, किसी भी नागरिक के लिए अपने जीवन में सुधार लाने की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण हो सकता है। तो मित्रों, इसी के साथ ही एक बार फिर से मैं उस महान आत्मा की पुण्य स्मृति को नमन करता हूं, और आप सबसे अनुमति भी चाहता हूं। नमस्कार।